नमस्कार श्रोताओं, मोबाइल वाणी में आपका स्वागत है। कल की बड़ी खबर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन करने वाले पहलवानों की रही। रेसलर बजरंग पुनिया के न्याय न मिलने की बात कहते हुए पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री के घर के बाहर रख दिया। एक खबर कर्नाटक सरकार के उस फैसले की रही जिसमें राज्य के स्कूल कॉलेजों में लगे हिजाब बैन को हटाने का निर्देश दिया गया है। रेसलर बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाया, कहा अब इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकता। रेसलर बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। बजरंग ने चिट्ठी में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया है। प्रधानमंत्री आवास में एंट्री नहीं मिलने पर बजरंग ने अपना अवार्ड सामने फुटपाथ पर रख दिया। बजरंग ने कहा, महिला पहलवानों के अपमान के बाद मैं ऐसी सम्मानित जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, इसीलिए सम्मान लौटा रहा हूं। अब इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकता। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगाने वालों में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और संगीता फोगाट शामिल है। एक दिन पहले ही संजय सिंह की कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने से नाराज साक्षी मलिक कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर चुकी है। बजरंग को 12 मार्च 2019 को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि जनवरी में ब्रजभूषण सिंह का सेक्सुअल हैरेसमेंट के गरीब गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस समय शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी, जो अप्रैल तक आते आते 7 रह गई थी। कर्नाटक सरकार ने हिजाब से बैन हटाया। सीएम सिद्धारमैया बोले, लोगों को पहनावा चुनने का अधिकार। कर्नाटक सरकार ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगे बैन को हटा दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर लोगों को कपड़े, पोशाक और जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कॉलेजों में भी जा सकती है। पोशाक और भोजन का विकल्प व्यक्तिगत है, मैं इसमें बाधा क्यों डालूं? जो चाहो वो पहनो, मैं धोती पहनता हूं, तुम पैंट शर्ट पहनते हो, इसमें गलत क्या है? कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार ने फरवरी 2022 में राज्य के स्कूल कॉलेजों में सभी तरह के धार्मिक वचन वाले कपड़े पहनने पर रोक लगाई थी। इस फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। वहीं 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बेंच में एक राय नहीं बन सकी थी। अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा पहला एयरक्राफ्ट, 30 दिसंबर को पीएम एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पर पहली बार एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की। इसका ट्रायल इंडियन एयरफोर्स के विमान से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन और 3,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दिन दिल्ली से इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट अयोध्या पहुंचेगी। 22 जनवरी को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होना है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए देश विदेश में भी न्योता भेजा है। कई देशों के डेलीगेट्स के भी आने की उम्मीद की गई है। इसके अलावा ट्रस्ट ने मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे 100 से ज्यादा वीवीआईपी को इनवाइट किया है। ज्यादातर वीआईपी अपने निजी प्लेन या हेलीकॉप्टर से आएंगे। साथ ही अयोध्या दर्शन के लिए रेगुलर फ्लाइट्स का भी ऑपरेशन होने से कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक साल में 52,000 केस निपटाए, यह पिछले साल से 31% ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में 52,191 मामलों का निपटारा किया है। कोर्ट ने 2022 की तुलना में 12,000 यानी 31.13% ज्यादा मामलों को निपटाया है। इसमें बैकलॉग के 3,000 मामले भी शामिल है। पिछले साल 39,800 मामले निपटाए गए थे। कोर्ट ने केसेस के जल्द निपटारे का श्रेय नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ज्यूडिशियल सिस्टम में हुए रिफॉर्म को दिया है। कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 15 दिसंबर को संसद में बताया था कि देश की अदालतों में 5,08,85,856 केस पेंडिंग है। मेघवाल ने बताया कि 6 महीने में 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या 69,766 थी, जो दिसंबर को बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई। वहीं 61 लाख से ज्यादा केस 25 हाईकोर्ट में पेंडिंग है। बाकी के केसेज डिस्ट्रिक्ट और अधीनस्थ अदालतों में पेंडिंग है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 39 रुपए घटे। दिल्ली में 19 केजी वाला सिलेंडर अब 1,757 में मिलेगा। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम 39.50 रुपए घटा दिया है। अब दिल्ली में 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 1,757 रुपए की जगह 1,796.50 रुपए में मिलेगा। इंटरनेशनल बेंचमार्क में नरमी के चलते यह कटौती हुई है। इससे पहले ऑयल कंपनियों ने 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 21 रुपए का इजाफा किया था। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में लगभग हर महीने उतार चढ़ाव हो रहा है। हालांकि घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की कीमत 903 रुपए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर ही है। इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगस्त के बाद से ही इनके रेट जस के तस हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति, बाइडेन ने आने से किया इनकार। भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को न्योता भेजा। मैक्रों ने इन्विटेशन स्वीकार कर लिया है। वक्त की कमी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परेड में आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत ने मैक्रों को इनवाइट किया गया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन 23 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। ऐसा छठी बार होगा जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगे। 1976 से लेकर भारत अब तक 5 बार फ्रांस के राष्ट्रपति को रिपब्लिक डे के लिए आमंत्रित कर चुका है। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस की बस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। वो इस परेड में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री थे। यूक्रेन का दावा, रूसी सैनिकों में फैली रहस्यमयी बीमारी, उल्टी के साथ आंखें लाल होने की शिकायत, किडनी फेल हो रही। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। इसके चलते सैनिकों की आंखें लाल हो रही है और वो उल्टियां कर रहे हैं। उनकी किडनी भी फेल हो रही है। यूक्रेन का कहना है कि यह बीमारी चूहों से फैल रही है। बीमारी के रेड बाइट फीवर या माउस बाइट फीवर नाम दिया गया है। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 241 पॉइंट्स बढ़कर 71,106 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 94 पॉइंट्स बढ़कर 21,339 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 23 दिसंबर 1902 किसान दिवस, यानी आज ही के दिन यूपी के मेरठ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1937 में बागपत के छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1939 में अंग्रेजों के शासन के दौरान जब यूनाइटेड प्रोविंस मौजूदा उत्तर भारत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, तब चरण सिंह किसानों को सूदखोरों के चंगुल से निकालने के लिए डेप्ट रिडेम्पशन बिल लेकर आए। 1946 में यूपी के सीएम गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने। 1952 में डॉक्टर संपूर्ण आनंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। यूपी में मंत्री रहते किसानों के लिए जमींदारी उन्मूलन बिल ले आए। केंद्र में मंत्री रहते हुए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की स्थापना की। और अब आज का सुविचार। मुश्किलों को मौके की तरह देखें।